लो मैं आ गया। कहानी फिर से शुरू करते हैं कृष्णावतार की। कंस ये देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हम दो 14 और 16 साल के बच्चे उसकी पूरी पहलवान टीम को अखाड़े में चित कर देंगे। फिर भी वो इतना घमंडी था कि अपने खराब वक्त को आते हुए नहीं देख सका। अब उसने अकेले मुझको लड़ने की चुनौती दी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहलवानी के खेल में सेम हाइट और वेट के लोग ही मुकाबला करते हैं, लेकिन कंस ने पहले कब नियम माने थे जो अब मानता। मेरे और उसके दांव पेच शुरू हो गए। मेरा हाइट वेट और उम्र में कम होना मेरे लिए पॉजिटिव रहा क्योंकि मैं जितनी जल्दी मूव ले पाता उतनी जल्दी कंस नहीं ले पाता था। उसका शरीर भारी था ना, और फिर उसे मुझको मारने की भी जल्दी थी तो वो आराम से कुश्ती नहीं लड़ पाया। तो परिणाम ये हुआ कि हमारे मुकाबले में कंस जल्दी थक गया। अब मुझे बस अपने आप को उससे बचाते हुए उसे और ज्यादा थकाते जाना था। मैंने कंस को खूब थकाया और जब कंस गिरा तो मैंने उसकी छाती के सबसे सेंसिटिव एरिया पर जोरदार मार लगाई। हाँ बच्चों, हमारे छाती में एक नाजुक और कमजोर हिस्सा होता है जहाँ अगर जोर से वार कर दो तो आदमी ढेर हो जाता है। अब कंस का वध तो हो गया, लेकिन कंस की पत्नियों, मेरा मतलब मेरी मामियों के पिता जरासंध ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। हमारी छोटी सी मथुरा और जरासंध का बहुत बड़ा राज्य और हजारों लोगों की सेना। हमारे निर्दोष नागरिक मर रहे थे, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता था। तो मैंने मथुरा के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि अगर जरासंध से लड़ना पॉसिबल नहीं है तो उसके हाथों मरने से अच्छा है ये जगह छोड़कर कहीं चले जाएं। कई लोगों ने मेरे इस निर्णय के कारण मुझे कायर कहा और रणछोर दास का नाम भी दिया, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने जरासंध से बहुत दूर गुजरात के समंदर के किनारे द्वारका नाम की नगरी बसाई। हम वहाँ लंबे समय तक चैन से रहे। हमारी सेना भी धीरे धीरे ताकतवर हो गई। मैं कभी युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन युद्ध ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जब हम ताकतवर देश बन गए तो बहुत से लोग अपने युद्धों में हमारी मदद मांगने लगे। उनमें मेरी बुआ कुंती के बेटे पांडव भी थे जिनसे दुर्योधन ने उनका राज्य छीन लिया था। हमने महाभारत की विश्व प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी और हम जीत भी गए। गुजरात के समुद्री रास्तों से हमने दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाया तो हमारे पास पैसे भी ढेर सारे आए, लेकिन कभी कभी ज्यादा पैसे बहुत सी बुराइयां भी ले आते हैं। लोग खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगते हैं, बुरी आदतें लग जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारा समाज जिसे हम यादव कुल कहते थे एक दूसरे से जलने लगा, एक दूसरे का बुरा चाहने लगा। एक भाई दूसरे भाई को पसंद नहीं करता था। ढेर सारे हथियारों के लगातार उपयोग से समंदर में हलचल मचने लगी, जिसे हम आज सुनामी के नाम से जानते हैं ना। ऐसा ही सुनामी हमारे समंदर में बार बार आने लगा, जिसमें धीरे धीरे करके द्वारका डूबने लगी। मैं मेरे लोगों को बचाने के लिए प्रभास नाम की जगह पर ले आया, लेकिन वो लोग इन लड़ाइयों और लगातार नेचर के उतार चढ़ाव के कारण इतने वायलेंट हो चुके थे कि एक दूसरे को मार मार कर खत्म हो गए। फिर एक दिन जब मैं अकेला जंगल में बैठा अपने लोगों को याद कर रहा था, तब एक शिकारी ने मुझे हिरण या कोई और जानवर समझकर दूर से तीर मार दिया। इस तरह मेरे आठवें अवतार श्री कृष्ण का अंत हुआ। बच्चों, मेरा ये अवतार बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ और मुश्किल था, और इसी अवतार के अंत के साथ ही इस धरती पर चौथा युग आया, कलयुग। लेकिन कलयुग और उसके अवतारों की कहानी हम बाद में कहेंगे और सुनेंगे। चलिए फिर अपने अगले अवतार की कहानी तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।